एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अहम किताब पर बात करने जा रहे हैं, नॉलन गर्ड्स की नाइलिज्म।
नाइलिज्म,
हाँ। और हाँ, ये शब्द नाइलिज्म मतलब शून्यवाद सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे। ऐसा लगता है जैसे कोई अकेडमिक बहस हो।
हाँ बिल्कुल, लगता है हमसे बहुत दूर की बात है।
पर गर्ड्स की ये किताब इसीलिए खास है, ये दिखाती है कि नाइलिज्म कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। ये आज हमारी जिंदगी से, हमारी राजनीति से और खास तौर पर हमारी टेक्नोलॉजी से मतलब बहुत गहराई से जुड़ा है।
सही कहा। आज का जो दौर है, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ, और फिर भी कई बार एक खालीपन सा लगता है।
हाँ, एक दिशाहीनता, जैसे पता नहीं क्या करें, किस चीज का क्या मतलब है।
बिल्कुल। तो ये किताब इसी एहसास को, इसी अहम सवाल को पकड़ती है कि कहीं हम अनजाने में ही इसके शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं।
हाँ, शुरू करते हैं लेखक से। नोलन गर्ट्स कौन है ये और इनकी बात क्यों सुने?
जी, नोलन गर्ट्स नीदरलैंड्स की 20 यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनका विषय है अप्लाइड फिलॉसफी, यानी व्यवहारिक दर्शन।
अच्छा, अप्लाइड फिलॉसफी मतलब जो दर्शन सिर्फ किताबों में न रहे, जिंदगी में उतरे।
हाँ, और उनके जो रिसर्च एरिया हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। फिनोमेनोलॉजी, यानी हम दुनिया को अनुभव कैसे करते हैं। अस्तित्ववाद, मतलब हम अपनी जिंदगी के मायने कैसे बनाते हैं। फिर राजनीतिक दर्शन और खास तौर पर टेक्नोलॉजी का दर्शन।
और यही कॉम्बिनेशन उन्हें खास बनाता है। वो सिर्फ पुराने दार्शनिक विचारों को दोहराते नहीं है,
नहीं बिल्कुल नहीं।
वो देखते हैं कि ये विचार आज की दुनिया में, हमारी भावनाओं में, हमारे रोज के तकनीकी अनुभवों में कैसे जिंदा हैं। जैसे वो नीत्से की ईश्वर की मृत्यु वाली बात को आज के स्मार्टफोन स्क्रोलिंग से जोड़ देते हैं।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। तो उनकी इस किताब नाहिलिज्म का मुख्य विचार क्या है, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं?
देखिए, गर्ट्स का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क ये है कि नाहिलिज्म का मतलब सिर्फ ये मान लेना नहीं है कि जिंदगी बेकार है या किसी चीज का कोई मतलब नहीं।
अच्छा, तो फिर क्या है? अगर ये सिर्फ एक सोच या विश्वास नहीं है तो क्या है?
गर्ट्स कहते हैं कि नाहिलिज्म आज के जमाने का एक अनुभव है, एक अवस्था है, सिचुएशन है।
अनुभव, अवस्था, मतलब?
मतलब ये वो हालत है जिसमें हम एक समाज के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर भी मूल्यों को बनाने, उन्हें संभालने और सबसे जरूरी उनके महत्व को महसूस करने की क्षमता खोते जा रहे हैं।
ओह, यानी प्रॉब्लम बाहर मतलब की कमी की नहीं, बल्कि अंदर मतलब महसूस करने की काबिलियत की है।
बिल्कुल, ये मानने की नहीं, महसूस करने की बात ज्यादा है। इच्छा शक्ति की कमी है, बुद्धि की नहीं।
ये तो बहुत गहरी बात है कि समस्या अंदर है,
हमारी क्षमता में।
तो किताब किन मुख्य पहलुओं पर फोकस करती है?
किताब के दो मुख्य पहलू हैं। पहला तो यही कि नाइलिज्म की जो पारंपरिक समझ है उसे चुनौती देना और उसे एक अनुभव के रूप में फिर से देखना।
ठीक है।
और दूसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो ये जांचना कि हमारी आज की राजनीति और खासकर हमारी टेक्नोलॉजी कैसे इस नाइलिस्टिक मतलब शून्यवादी हालत को अनजाने में बढ़ा रही है।
टेक्नोलॉजी, वो कैसे?
यहीं पर वो टेक्नोलॉजी के बफर इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे एक बचाव कवच। इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे, ये बहुत दिलचस्प है।
हाँ, ये सुनना चाहूंगा। अच्छा, तो किताब सिर्फ प्रॉब्लम बताती है या कोई रास्ता भी सुझाती है?
नहीं नहीं रास्ता भी है। गर्ट्स हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते। किताब का मकसद यही समझाना है कि हालत इतनी आम क्यों हो गई है और इससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल समाधान की तरफ इशारा है।
चलिए, ये तो ही किताब की एक झलक। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। गर्ट्स नाइलिज्म के इतिहास को कैसे देखते हैं, इसकी जड़ें कहाँ बताते हैं?
हाँ, गर्ट्स हमें इतिहास में ले जाते हैं, पर एक नए एंगल से। हम अक्सर नाइलिज्म को सीधे नीचे से जोड़ देते हैं।
हाँ, आमतौर पर वही सुना है।
लेकिन गर्ट्स बताते हैं कि इसकी शुरुआत दरअसल 19वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी आंदोलनों से हुई थी। वहाँ ये एक पोलिटिकल हथियार था।
पोलिटिकल हथियार, कैसे?
वो लोग पुरानी व्यवस्थाओं को, जार का शासन, चर्च, परिवार, सबको खत्म करना चाहते थे। उनका नारा था, सब कुछ नष्ट कर दो। उनका मानना था कि सब मिटाकर ही एक नई तर्क पर आधारित दुनिया बनाई जा सकती है।
अच्छा, तो शुरुआत एक राजनीतिक विद्रोह से हुई, फिर नीचे का क्या रोल था इसमें? उनकी वो ईश्वर की मृत्यु वाली बात।
नीचे ने इसे एक ज्यादा गहरी मतलब सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक समस्या के तौर पर देखा। उनके लिए नाइलिज्म पश्चिम के उन मूल्यों के खोखलेपन का नतीजा था जो हजारों साल से चले आ रहे थे, खासकर ईसाई यहूदी परंपरा के मूल्य। तो नीचे का वो कहना कि ईश्वर मर चुका है, वो सिर्फ नास्तिकता का ऐलान नहीं था, वो एक तरह का शोक था, उस पूरे नैतिक और आध्यात्मिक कंपस के टूटने का शोक जिसने पश्चिम को सच, अच्छाई, बुराई, उद्देश्य का एक फ्रेमवर्क दिया था।
तो जब ये फ्रेमवर्क, ये कंपस टूट गया तो हुआ क्या? लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इसके प्रति?
गट्स नीचे के हवाले से दो तरह के रिएक्शन बताते हैं। एक है निष्क्रिय नाइलिज्म,
पैसिव नाइलिज्म,
मतलब थकान, निराशा, हार मान लेना, ये सोचना कि भाई जब ऊपर से कोई गारंटी ही नहीं है, कोई बड़ा मतलब ही नहीं बचा, तो कुछ भी करने का क्या फायदा।
अच्छा।
बस आराम करो, मन बहलाओ, ज्यादा सोचो मत। गर्ट्स को लगता है कि हमारी आज की जो आरामदायक टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया है वो हमें इसी निष्क्रिय नाइलिज्म की तरफ धकेल रही है।
ये तो चिंता की बात है। और दूसरी प्रतिक्रिया क्या है?
दूसरी है सक्रिय नाइलिज्म, एक्टिव नाइलिज्म। ये ज्यादा साहसी, ज्यादा क्रिएटिव रास्ता है।
सक्रिय, वो कैसे?
सक्रिय नाइलिस्ट इस खालीपन को, इस ईश्वर की मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक मौका समझता है। वो पुराने मर चुके मूल्यों को जानबूझकर गिराता है, साफ करता है,
ताकि
नए जिंदा मूल्यों के लिए जगह बन सके। ये एक तरह का विनाश है पर नई रचना के लिए। ये हार नहीं मानता बल्कि चुनौती स्वीकार करता है कि चलो अब हम खुद अपने मूल्य बनाएंगे।
वाह, ये निष्क्रिय और सक्रिय का फर्क तो बहुत ही अहम लग रहा है। क्या गर्ड्स बताते हैं कि आज के समय में, खासकर राजनीति में, हमें कौन सा नाइलिज्म ज्यादा दिख रहा है?
हाँ बिल्कुल, वो तर्क देते हैं कि आज की राजनीति में नाइलिज्म का असर साफ दिखता है, खासकर उस तरह की राजनीति में जो सच बताने वाली संस्थाओं पर ही सवाल उठाती है।
जैसे
पत्रकारिता पर हमला, विज्ञान पर शक, अदालतों पर उंगली उठाना, आप सोचिए फेक न्यूज का जो शोर है, या क्लाइमेट चेंज जैसे वैज्ञानिक तथ्यों को नकारना, हर एक्सपर्ट पर, हर संस्था पर शक करना।
हाँ, ये तो बहुत देखने को मिल रहा है आजकल।
इसका नतीजा क्या होता है फिर, अगर किसी भी सच पर भरोसा ही ना रहे तो?
नतीजा होता है गहरा संदेह, उदासीनता और अलगाव। लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ सिर्फ पावर का खेल है, कोई सच झूठ है ही नहीं, तो फिर किसी भी चीज में हिस्सा लेने का या किसी बदलाव की कोशिश करने का क्या फायदा?
ओह, ये सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक स्फीयर में एक तरह से सच की मौत जैसा है, और ये लोगों को सार्थक कामों से, एक्टिव रहने से दूर कर देता है। ये निष्क्रिय नाइलिज्म का ही एक राजनीतिक रूप है।
ये तो वाकई बहुत गंभीर तस्वीर है। लेकिन आपने शुरू में टेक्नोलॉजी के बफर इफेक्ट का जिक्र किया था। मुझे लगता है यह गर्ट्स के तर्क का सबसे नया और शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। टेक्नोलॉजी कैसे नाइलिज्म को बढ़ावा दे सकती है? वो तो हमारी जिंदगी आसान बनाती है।
हाँ, और यहीं पर गर्ट्स का तर्क सबसे दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी सुविधा देती है, कंट्रोल देती है, आसानी देती है,
लेकिन
इसी प्रोसेस में वो हमारे और जिंदगी की जो असलियत है, जो कच्ची सच्चाई है, उसके बीच एक बफर बना देती है, एक अदृश्य कवच।
बफर, कवच, मतलब
स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, GPS, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी एप्स, ये सब हमें जिंदगी की सीधी टक्कर से बचाते हैं, उसकी मुश्किलों से, उसकी अनिश्चितताओं से, यहाँ तक कि उसकी बोरियत से भी। सब कुछ स्मूथ, आसान, बिना किसी रुकावट के।
लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? आराम और सुविधा किसे नहीं चाहिए?
दिक्कत ये है गर्ट्स के मुताबिक कि जिंदगी का जो गहरा मतलब है, जो सार्थकता है, वो अक्सर इन्हीं मुश्किलों, इन्हीं चुनौतियों, अनिश्चितताओं और यहाँ तक कि बोरियत से जूझने में ही मिलता है।
अच्छा, कैसे?
जैसे जब GPS हमें भटकने और खुद रास्ता खोजने के अनुभव से दूर कर देता है, तो हम सिर्फ रास्ता ही नहीं खोते बल्कि उस खोज से मिलने वाली जो एक खुशी होती है, एक आत्मनिर्भरता का एहसास होता है, वो भी खो देते हैं।
हाँ, ये बात तो है।
या जब सोशल मीडिया हमें सिर्फ परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट जिंदगियां दिखाता है, तो हम असल रिश्तों की जो उलझने हैं, उनमें जो मेहनत लगती है, उससे कतराने लगते हैं।
मतलब टेक्नोलॉजी हमें जिंदगी का जो रोनस है, उसका जो असली खुरदुरापन है, उसे दूर कर रही है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। वो हमें जिंदगी जीने वाले के बजाय उसे मैनेज करने वाला बना देती है। हम दुनिया से सीधे बिना किसी मीडियम के जुड़ने के बजाय उसे स्क्रीन पर दिखने वाले डेटा की तरह देखने लगते हैं, जिसे बस ऑप्टिमाइज करना है, कंट्रोल करना है। ये हमें दुनिया का दर्शक बना देती है, भागीदार नहीं। और इस दुनिया रहित आराम में, मतलब कि जो जड़ें हैं वो पनप नहीं पाती। ये हमें अनजाने में निष्क्रिय नायलिज्म की आरामदायक गोद में सुला देती है।
बाप रे, ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम इतना मददगार समझते हैं वही हमें एक गहरे स्तर पर खोखला कर रही हो। अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है तो गर्ट्स समाधान क्या बताते हैं, इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे?
देखिए, गर्ट्स का समाधान कोई आसान फॉर्मूला नहीं है, ना ही वो कहते हैं कि कोई नया भगवान खोज लो या कोई नई महान कहानी गढ़ लो।
तो फिर
वो हैना एरेंट और जान पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी विचारकों की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि रास्ता जिम्मेदारी अपनाने में है।
जिम्मेदारी? किस तरह की जिम्मेदारी, अपनी या दुनिया की?
दोनों की, दुनिया की और उसमें मौजूद दूसरे लोगों की देखभाल करने का एक सचेत चुनाव करना। टेक्नोलॉजी ने जो आरामदायक बफर हमारे चारों ओर बना दिया है उससे बाहर निकलना और जिंदगी की सच्चाइयों से, अच्छी और बुरी दोनों, एक्टिवली जुड़ना। गर्ट्स कहते हैं कि अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं रखी हुई है और हमें उसे खोजना है।
नहीं, नहीं।
अर्थ तो बनाया जाता है।
बनाया जाता है कैसे?
हमारे कामों से, हमारी पसंदों से, हमारी कमिटमेंट से, हमारी देखभाल से। ये दुनिया के अपने हिस्से की, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जिम्मेदारी उठाने का आह्वान है।
यानी समाधान बाहर नहीं, हमारे अपने एक्शन में है, सक्रियता में है। ये तो निष्क्रियता के बिल्कुल उलट हुआ। चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हुए कुछ सबसे जरूरी बातों को फिर से दोहराते हैं। वो कौन से 3-4 मुख्य संदेश हैं जो सुनने वालों को याद रखने चाहिए?
सोच नहीं, बल्कि आज के दौर का एक जीता जागता अनुभव है। ये वो एहसास है जब हमें कुछ भी सार्थक या महत्वपूर्ण महसूस नहीं होता, भले ही हम दिमागी तौर पर मूल्यों में यकीन रखते हों।
हाँ, ये अनुभव वाली बात बहुत अहम है।
और भारत में भी देखें तो तेजी से बदलते समाज में, करियर की अनिश्चितता में, सोशल मीडिया के प्रेशर में, युवाओं में ये खालीपन या दिशाहीनता की भावना दिखती है।
बिल्कुल। दूसरा अहम पॉइंट जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, टेक्नोलॉजी, खासकर हमारी डिजिटल दुनिया, निष्क्रिय नायलिज्म की सबसे बड़ी वाहक बन सकती है।
हाँ, ये बफर इफेक्ट वाली बात।
वही,
वो हमें सुविधा देने के नाम पर उन अनुभवों से काट रही है जिनसे असल में जिंदगी का मतलब बनता है, जैसे इंतजार करना, बोर होना, कोशिश करना, नाकाम होना, सीधे इंसानी रिश्ते निभाना।
सही काम। सोचिए कैसे हर चीज फटाफट ऑनलाइन मंगा लेने की आदत हमें सब्र और कोशिश के सुख से दूर कर रही है।
तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा, इस सक्रिय बनाम निष्क्रिय निलिज्म का चुनाव हमारे हाथ में है। जब हमें लगे कि दुनिया में कोई मतलब नहीं बचा, तो क्या हम हार मानकर बैठ जाते हैं निष्क्रिय, या इसे एक चुनौती समझकर अपने लिए, अपने आसपास के लिए नए मतलब गढ़ने की कोशिश करते हैं? सक्रिय, ये एक नजरिया है, एक चुनाव है।
और चौथा जो उम्मीद जगाता है, समाधान मतलब खोजना नहीं बल्कि बनाना है, जिम्मेदारी के जरिए। अर्थ कहीं बाहर तैयार रखा हुआ नहीं मिलेगा, उसे अपने कामों से, रिश्तों से, अपनी पसंदों से, दुनिया की देखभाल करके हमें खुद रचना होगा।
और ये बड़े बड़े कामों से ही नहीं होता, छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। अपने मोहल्ले की किसी समस्या में हाथ बटाना, अपने काम को ईमानदारी से करना, या बस किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनना।
हाँ, ये रोजमर्रा की जिम्मेदारी। किताब में कई ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ मुख्य विचारों को अगर अपने शब्दों में कहें तो?
हाँ, जैसे पहला, असली नाइलिज्म ये सोचना नहीं कि सब बेकार है, बल्कि कुछ भी सार्थक महसूस करने की ताकत खो देना है। ये दिमाग की नहीं, दिल या इच्छा शक्ति की कमजोरी है। ये नाइलिज्म की परिभाषा ही बदल देता है ना?
बिल्कुल।
दूसरा,
ईश्वर की मौत का मतलब सिर्फ भगवान का न होना नहीं था, बल्कि उस पूरे नक्शे का गुम हो जाना था जिससे पश्चिम अपनी दिशा तय करता था। ये उस ढांचे के टूटने के गहरे असर को दिखाता है।
तीसरा, टेक्नोलॉजी पर, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिंदगी की सीधी धूप और बारिश से बचाने वाली छतरी की तरह है। ये आराम तो देती है, पर हमें मौसम का असली एहसास और उससे लड़ने की हिम्मत भी छीन लेती है। मतलब तो उसी धूप बारिश में भीगने से बनता है। ये टेक्नोलॉजी का जो डबल एज है उसे दिखाता है।
बहुत अच्छा कहा। और चौथा, समाधान पर।
चौथा, नाइलिज्म का जवाब कोई नया महान सच ढूंढना नहीं, बल्कि दुनिया के अपने कोने की जिम्मेदारी उठाना है। मतलब ढूंढा नहीं जाता, उसे अपनी देखभाल और अपने वादों से सींचा जाता है। ये एक्शन और कमिटमेंट पर जोर देता है।
ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी जिंदगी को कितना बफर करके जी रहे हैं। अच्छा, इन विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, कुछ ठोस तरीके?
हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। खुद से पूछना कि क्या ये ऐप, ये डिवाइस मुझे जिंदगी से जोड़ रहा है या काट रहा है? क्या ये मुझे आराम दे रहा है या आलसी बना रहा है? कभी कभी जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना, जैसे बिना जीपीएस के रास्ता खोजने की कोशिश करना, बोर होने पर फोन उठाने के बजाय बस खिड़की से बाहर देखना, या किसी को टेक्स्ट करने की जगह कॉल करना। डिजिटल डिटॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं।
और निजी स्तर पर जिम्मेदारी कैसे लें?
खुद को हालात का शिकार मानने के बजाय एक एक्टर मानना। ये सोचना कि मेरे छोटे छोटे चुनाव भी मायने रखते हैं। मुश्किलों से भागने की जगह उन्हें कुछ सीखने या मजबूत बनने का मौका समझना। अपने काम को, चाहे वो कुछ भी हो, पूरे दिल से करना।
और दुनिया से जुड़ाओ, स्क्रीन से हटकर।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। असली फिजिकल दुनिया से जुड़ना, स्क्रीन टाइम कम करके लोगों से मिलना, प्रकृति में समय बिताना, कोई ऐसा हुनर सीखना जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो, बागवानी, खाना बनाना, पेंटिंग, कुछ भी, अपने आस पड़ोस के जीवन में हिस्सा लेना, ये चीजें हमें उस वास्तविकता से जोड़ती हैं जो वर्चुअल नहीं है।
सही बात। और राजनीतिक नाइलिज्म का क्या करें, उस शक और उदासीनता से कैसे लड़ें?
समझदार और आलोचनात्मक पाठक या दर्शक बनना। हर खबर पर आंख मूंद कर यकीन ना करना, लेकिन साथ ही हर खबर को सिरे से खारिज भी ना कर देना। अलग अलग स्रोत देखना, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना सीखना। ये मानना कि हाँ, सच जानना मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं, और पब्लिक डिबेट में हिस्सा लेना, चाहे वो छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। चुपचाप बैठ जाना भी तो एक तरह का निष्क्रिय नाइलिज्म ही है।
बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से आपने क्या सीखा, या आपको सबसे ज्यादा किस बात ने चौंकाया?
मेरे लिए तो टेक्नोलॉजी वाला एंगल सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला था। ये सोचना कि हमारी प्यारी डिवाइसेज ही हमें मतलब से दूर कर सकती हैं, हाँ, ये थोड़ा डरावना भी है और बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला भी, कि कैसे सुविधा और सार्थकता में एक तनाव है।
हाँ, मेरे लिए जिम्मेदारी वाली बात सबसे अहम रही। अक्सर हम मतलब खोजने की बात करते हैं जैसे वो कहीं छिपा हुआ है, कोई खजाना है, पर ये विचार कि मतलब तो बनाया जाता है हमारे रोज के कामों और चुनावों से, ये बहुत पावरफुल एहसास देता है।
हाँ, ये हमें पैसिव से एक्टिव बनाता है।
बिल्कुल, ये हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनाता है, पैसेंजर नहीं। और उस सक्रिय नाइलिज्म का आइडिया भी कि खालीपन अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकता है।
हाँ बिल्कुल। और शायद सुनने वालों के लिए सोचने का सवाल यही है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से अदृश्य बफर हैं जो हमें असलियत से, जिंदगी की सीधी टक्कर से बचा रहे हैं, और अगर हम उन बफर्स को हटाने की हिम्मत करें तो जिंदगी के कौन से नए गहरे मतलब हमें मिल सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।